जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए।
प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा।
भारत के अति निकट पड़ोसी देश नेपाल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग सेवा केंद्र की लगभग 200 शाखाओं की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी राज रानी कुमार का जन्म 1938 में भारत के पंजाब में फगवाड़ा गांव में हुआ। सन 1960 में अपने युवाकाल के प्रारंभ में ही आपको माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल 2 साल के भीतर ही 1962 में उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया और अमृतसर, बटाला, गुरुदासपुर, पटना आदि भारत के मुख्य सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए 1973 से पशुपतिनाथ की नगरी नेपाल की राजधानी काठमांडू में मुख्य संचालिका के रूप में पद संभाला। तब से अब तक लगभग 42 वर्षों में आपने अपने प्रभावशाली वक्तव्य, मृदु भाषा और प्रेमपूर्ण व्यवहार से नेपाल वासियों में ईश्वरीय संदेश फैलाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दिया। अनेक स्वास्थ्य जागृति, वातावरण जागृति अभियान, राजयोग शिविर, ज्ञान गोष्ठी तथा सेमिनारों को संबोधित किया। दशकों से नेपाल की धरणी और लोगों की सेवा अर्थ उनके समर्पण को श्री 5 महाराजाधिराज सरकार ने 1995 में स्वर्ण शुभ जन्मोत्सव पदक तथा श्री 5 महाराजाधिराज सरकार गोरखा दक्षिण बाहु पदक से 1998 में सम्मानित किया। अब सुनते हैं राज दीदी की जुबानी अपनी कहानी।
ओम शांति। प्यारे भगवान का बनने के पहले 4-5-6 साल की होते होते हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भावना थी। थोड़ा और बड़ी 6-7-8 वर्ष की होने से मेरे मन में आने लगा कि हम तो मीरा बनेंगे, एक गिरधर गोपाल की मीरा बनकर भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करेंगी। तो मन के अंदर बहुत लगन रहती थी। थोड़ा बड़े होने से इधर उधर शुरू में तो रामलीलाएं होती थी, कृष्ण लीलाएं होती थी, तो हमारी माँ भी जाती थी, हमको भी ले जाती थी। तो जो हम कृष्ण ने वहां पर लीला की, फिर वही आकर के हम लोग छुट्टी के दिन आपस में साथी साथी मिल करके तो लीला करते थे। लौकिक रीति से भी हम लोग 5 बहनें थी और 1 भाई था। हमारे माँ बाप के पुराने जमाने के संस्कार स्वभाव थे और हमें भी हमारे माँ बाप की या दादा भी हमारा था। इन्हों की शादी होती है कि क्या है, हमको ये भी सब कुछ मालूम नहीं रहता था। बहुत प्योर शुद्ध संस्कार शुरू से ही थे, इसलिए बड़े होने के बाद तब माँ बाप को तो जैसे करना है रस्म रिवाज करते हैं। तो कुछ समय के बाद तब हम 20 के 21 वर्ष की थी, उसके बाद हमें हमारी बड़ी बहन ने हमें ज्ञान सुनाया। उन्होंने ज्ञान पंजाब में बटाला में सुना, तो उन्होंने आकर के हमारे भाई का बर्थडे था, तो उसमें उन्होंने रात को, हम लोग का बड़े बड़े अच्छे घर होते थे तो बड़े कमरे में हम लोग सब इकट्ठी बहने होती थी तो सो जाती थी, तो वो चारपाई पर बैठ करके तो ध्यान करने लगी। तो हमने उसको पूछा ध्यान के बाद, तो बहन आप क्यों ऐसे बैठ गई? तो बोली मैं योग कर रही हूँ, हमारे बटाला में दीदियाँ आई हैं तो वो बहुत अच्छा योग कराती है। वो कहती है कि भगवान आए है इस संसार में, तो उसने आपको 10-15 मिनट सुनाया। तो हम तो एकदम, हमारा मन आकाश के ऊपर उड़ गया, कोई ध्यान में नहीं वैसे ही, और ऊपर वो भगवान सुनाती गई, हमारे आगे भगवान कृष्ण आया, इसलिए हम देखती रही। फिर उसके बाद हम लोग अमृतसर में गए, तो अमृतसर में चंद्रमणि दादी थी, चंद्रमणि दादी के पास हम भी ले गई, तो चंद्रमणि दादी बैठी थी साथ ही, चंद्रमणि दादी अपने पलंग पर थी, हमको कुर्सियों में बिठा दिया अपने बराबर। तो फिर चंद्रमणि दादी ने हमको परिचय दिया भगवान का, शिव बाबा का, तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। तो एक बार शुरू से ही हमारे मन के अंदर ये संस्कार स्वभाव, किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए और झूठ बोलना नहीं चाहिए, हम कभी भी किसी भी बात में कसम नहीं उठाते थे, सतगुरु की कसम, सौ गुरु की, जैसे ऐसे बोलते हैं। तो हमारी माँ ने बतलाया था कि जो कसम है ये झूठे लोग करते हैं, जो सच्चे होते हैं उनके लिए कसम नहीं होती है। फिर तो आहिस्ते आहिस्ते हम एक साल तक ज्ञान सुना, एक साल के अंदर हमारा कर्म बंधन खत्म हो गया, 2 साल के बाद हम स्वतंत्र हो गई। तो हम पंजाब अमृतसर में ही चंद्रमणि दादी के साथ रही। तब चंद्रमणि दादी तो बाबा ने जैसे उनको टाइटल दिया हुआ था, ही था शेरे पंजाब है, तो हम भी डर भय ऐसा मन के अंदर नहीं रखती थी, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, ये शुरू से ही मन में रहा था। तो खैर करते करते फिर मधुबन में भी गए दादी के साथ ही, चंद्रमणि दीदी के साथ, तो मम्मा थे बाबा थे दोनों के सामने, तो स्वाभाविक होता था सबका ही। तो बाबा ने फिर बुलाया सबको, टोली दी, दादी चंद्रमणि परिचय देती गई कि ऐसे ऐसे 2 साल के अंदर इसका हिसाब किताब भी खत्म हुआ, स्वतंत्र है, बाबा अभी ये आश्रम में रहती है, नाम बतलाया परिचय दिया। तो बाबा ने हमको बहुत प्यार किया, टोली खिलाई, और बाबा ने कहा कि बच्ची नष्टो मोहा है, बहुत बहुत सच्ची है दिल की, इसलिए चंद्रमणि दादी ये बहुत चंद्रमणि ये बहुत अच्छी बच्ची है। फिर सब कटोली बाबा ने दी। खैर उसके बाद तो हम लोग वहाँ 15-20 दिन रहे, क्योंकि पहले तो ऐसे नहीं होता था, आज जैसे अभी इतने दिन रहना है। तो उसके बाद हम जब आए तो प्यारे बाबा मम्मा का प्यार स्नेह बहुत बहुत पाया, रियल में सत्य क्या है, यही हमारा संसार है। तो जब ही वहां से विदाई होनी थी आने के टाइम, तो मन के अंदर ऐसा लगा कि हम तो मधुबन से जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। और फिर हमने सोचा कि जब ट्रेन में बैठेंगे तब हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, वहां भी नहीं हुआ। फिर दिल्ली ट्रेन चेंज करेंगे, वहां हो जाएगा आश्रम जाने से, ऐसा माना सिवाय एक बाबा की याद के दुनिया क्या है ऐसा अनुभव होता था। हमारी लौकिक रीति से भी हमें याद है कि हमारी रस्सी ऊपर बांधी रहती थी ज्योति रूप बाबा के साथ और साकार बाबा साथ, तो रस्सी हमको चलाती थी। याद आता है कि लगभग परिवर्तन लाने में हमारे को कोई खास मेहनत नहीं लगी है। कुछ समय के बाद तो प्यारे बाबा ने हमें पटना जाने के लिए चंद्रमणि दादी को कहा, क्योंकि पटना में तो अपनी, तब तो कुमारका दादी बोलते थे प्रकाशमणि दादी को, तो वहां से वो आए थे तो वहां का थोड़ा देख रेख करना जरूरी था। जालान राजा था तो दादी तो वहां ही दरबार में ही रहते थे, इसलिए फिर बाबा ने हमको बोला, तो हम तो कभी पंजाब से बाहर नहीं गई, तो हमने बाबा को बोला, बाबा हम तो कहाँ संभाल पाएंगे बिहार में जाके, इतना दादी का किया हुआ सेवा। दादी तो बाबा बहुत हमें समझाते थे, बच्ची तुम अपने आप को नहीं जानती, बाबा तुम्हें जानता है, तुम सब ठीक कर लोगी। तो हमको तो मन में आता था बाबा ऐसे करके हमें भेजने के लिए बोलते हैं और क्या, तो हमें मन के अंदर जाने से जैसे अच्छा नहीं लगता था, तो बाबा के आगे आंख में पानी भी आता था, तो हमको डर नहीं लगता था कि भगवान के आगे रोना, अरे भगवान हमारा बाप है, रोने का क्या प्रश्न है। इसलिए कोई दिखावा हमको शुरू से ही ऐसा नहीं रहा था, इसलिए दादियों के शुरू से ही हम नजदीक रही, अपनी ब्रजेंद्रा दादी, मधुबन आना जाना, अपनी सब जितनी भी दादियां हैं, बड़ी दीदी थी अपनी, उनके भी नजदीक, सब के बहुत नजदीक, दादियों की ही पालना पाते पटना में आए, तो जैसा बाबा ने कहा वैसा सभी ठीक ठाक ड्रामा अनुसार हो गया। फिर ये अपना नेपाल नजदीक था तो अपने भाइयों ने कुछ ने बोला, तो दीदी नजदीक नेपाल देश है, वहां सेवा करें। तो फिर हम वहां पटना से नजदीक अपने को रक्सौल, लास्ट बॉर्डर, तो रक्सौल में प्रदर्शनी की, प्रोजेक्टर दिखाया, तो रक्सौल के लोगों ने कहा कि आप नेपाल में करो वीरगंज, वहां भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद समझो हम करते करते काठमांडू में सेवा शुरू किया, जिसको लगभग 40 साल हो गया होगा। फिर उन दिनों में भी हम 2 साल तक पटना भी, इधर भी उधर भी आती जाती रही, लेकिन फिर यहाँ सेवा बढ़ती गई, तो दादी ने भी दीदी ने भी कहा कि दोनों तरफ देखो, तो दोनों तरफ तो दादी मुश्किल है। इसलिए करते करते वो पुराने दिन बहुत बहुत याद आते हैं। तो सेवा बढ़ती गई बढ़ती गई, तो शुरू से ही सेवा हमने राजाओं से शुरू की, क्योंकि बाबा के पत्र होते थे, बाबा के लिखे हुए पत्र, उसकी फोटो कॉपी शायद करके रखी मधुबनी में क्या है, तो वो हम लेकर के आए। तो यहाँ हम उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको सुनाते थे कि ऐसे ऐसे जो दादा लेखराज लकीरा यहाँ आते थे, उनों के द्वारा कैसे भगवान ज्ञान सुनाते हैं। तो हम तो बिना टाइम लिए चले जाते थे, कार्ड देते थे तो हमको प्यार से बुलाते थे, इसलिए उनसे ही समझो सेवा जो है वो शुरू हुई। इसलिए प्यारे बाबा की सेवा अभी तक सहज सरल होती जा रही है। बाबा कहते बच्चे कुछ ना कुछ परिस्थितियां तो आती हैं, आएंगी आएंगी जाएंगी चली जाती हैं, तो बहुत खुशी से प्यार से प्यारे बाबा की सेवा करते। हमने मेरे तो अभी भी ख्याल में है कभी सेवा का प्रोग्राम बैठ करके बनाए, भाई अभी ये करना है ये करना है, वो खत्म ही नहीं होता तो क्या करना है। पर्व है जहाँ के इतने पर्व आते हैं, उसमें भी रक्षाबंधन राखी आती है, राखी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, हजारों हजारों को राखी यहाँ भेजी जाती है बाय पोस्ट और आते भी हैं यहाँ। और 5 बजे वीआईपी की राखी शुरू होगी, बाहर गली सारी स्कूल तक सारी लाइन लगती है वीआईपी लोगों की, जो राखी बांधने आते हैं जो संपर्क में है। इसलिए बहुत सहज सरल राखी जाती तो है, तो भी किसी को कुछ हो जाए फोन आएगा, दीदी हमें याद नहीं किया, हमें राखी नहीं आई है।
जब हम शुरू शुरू में 2-4 दिन ही हुए थे ज्ञान में, और दीदी जी ने जो ज्ञान के लिए और धारणा के लिए एक मजबूती की बातें बताई थी, उसमें यही बताया था कि देखो मनुष्य का जीवन देवतुल्य बनना चाहिए, देवता बनने वाले जीवन के लिए कितना शुद्ध आहार खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुर्दा कहा जाता है, मुर्दे को तो मशान घाट में ले जाकर के जलाते हैं। इसी तरह से अगर कोई पशु पंछी मर जाता है तो भी एक प्रकार से मुर्दा ही बन जाता है। अगर उस मुर्दे को हम अपने पेट में रखते हैं, पेट में डालते हैं, तो जैसे मनुष्य का पेट मशान घाट बन जाता है। अब बताइए देव आत्मा का जो शरीर है, एक मंदिर है, इस मंदिर में ऐसी चीज हम डाल नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे उनके प्रेरणादायी जो बोल थे, उनके द्वारा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही उमंग हुआ, उत्साह मिला, बल मिला।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी एक भाई है, उप प्रधानमंत्री जितने भी लगभग मंत्री हैं, बहुत बहुत नजदीक है। इसलिए वो भी कैसे प्यारा बाबा कराता था, और बड़ी दीदी भी, जानकी दादी भी 2 बार, लगभग सब दादियां आई हुई है। इतनी यज्ञ की कारोबार संभालते हुए भी दीदी जी की हमेशा चिंता मुक्त स्थिति हम देखते हैं। कभी कभी मैं दीदी को कहती हूँ कि दीदी इस बात की चिंता है, ये कार्य असंभव है, कार्य नहीं हो सकता। दीदी जी कहते हैं कभी चिंता नहीं करो, चिंता चिता के समान है, हमेशा हर एक बात में हमको शिक्षा देना, हम बहनों को आगे बढ़ाना, हम बहनें जीवन में उन्नति कैसे करें, प्रगति कैसे करें। तो ऐसे दीदी जी हमेशा हम बहनों को, खास करके मुझको भी अपनी पालना देते हुए हमेशा दीदी जी आगे बढ़ाते रहते। यहाँ राखी जो है वो पंडित लोग, पुजारी लोग अपने जजमानों को बांधते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, करते हैं। बहने यहाँ राखी बांधने का रसम नहीं है। तो पहले वर्ष जब ही हमने बोला कि अभी तो यहाँ राखी का पर्व है, तो भाइयों ने कहा तो नहीं दीदी, यहाँ पर राखी बहने नहीं बांधती है, पंडित लोग ही जाते हैं और उनको राखी बांधते हैं, उनको पैसे देते हैं, इसलिए यहाँ राखी बहनों को बहने बांधती नहीं है, नहीं तो बोलेंगे पैसा लेने आए हैं। तो खैर हमने छोड़ दिया। दूसरे वर्ष फिर हमको मन में आया कि राखी की तो इतनी बड़ी सेवा होती है, और हमने 15-20 दिन पहले लगभग 30-35 चिट्ठी बनाई जिसमें राखी का रहस्य बताया कि बहनें क्या लेती हैं, क्या नहीं, कैसे हम लोग बहनें रूहानी कुछ ना कुछ कमी कमजोरी, लेकिन हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, इसलिए आप अगर कहो तो हम आपको राखी भेजे या हम आपको बांधने के लिए आए, हमने चिट्ठियां भेज दी। लगभग उसमें 10-15 के टेलीफोन आए तो क्यों नहीं आप हमको राखी बांध सकते हैं। कोई ने कहा कि ठीक है, क्यों नहीं आप हमको राखी भेज सकते हैं, तो हमने वैसा वैसा किया। और यहाँ का नेपाल का चीफ जस्टिस, उसने हमको बोला कि आप हमको राखी बांध सकते हैं। तो 7 बजे सुबह का टाइम दिया, हम लोग सुबह 7 बजे उसको राखी बांधने गए। प्रधान न्यायाधीश जब गए तो राखी बांधी, समझाया बुझाया, ज्ञान ध्यानी तो समझाना था, तो कहता है किस में जाएंगे, तो हमने कहा हम टैक्सी लेंगे, टैक्सी से हम जाएंगे। तो कैसे आए, हमने कहा हम लोग टैक्सी से ही आए, यहीं तो साथ ही तो है मेन रोड, वहां से मिल जाती है, हम टैक्सी में जाएंगे। तो वो अपने ड्राइवर को आवाज लगाई, बोला गाड़ी निकालो इनको छोड़ के आवाश्रम में। तो गाड़ी तो उन दिनों में, अभी तो क्या गाड़ी तो गिनती की होती थी उस समय नेपाल की में, तो चीफ जस्टिस की गाड़ी वो तो दुनिया यहाँ का सब लोग जानते हैं। तो मैंने फिर उनको बोला कि हम तो आश्रम में नहीं जाएंगे, कुछ लोग मंत्री क्वार्टर में भी टाइम दिया वहां जाएंगे, तो बोला ठीक है वहां ले जाओ इनको, जहां जहां जाए जाए, उसके बाद लास्ट आश्रम में इनको छोड़ के आना।
लव और लॉ का पूरा पूरा बैलेंस रखती है और उनमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति भी बहुत ही तेज है। वो छिन्न में ही परख लेती हैं कि उनमें क्या विशेषताएं हैं और उसी विशेषता को आगे रखकर उनको आगे बढ़ाती है।
तो मंत्री लोग भी जब बाहर छोड़ने आए तो चीफ जस्टिस की गाड़ी खड़ी है, तो वो लोग भी हैरान होने लगे कि ये गाड़ी, तो हम बोलते थे पहले उनको राखी बांधी है तो उन्होंने गाड़ी दी थी कि आप सबको इसी में बांध आना, इसलिए हम गाड़ी इसी में ही आए हैं। तो अच्छा अच्छा जी, ओम शांति, उनका भी जैसे ठंडे होते गए। और सेवा शुरू से ही इसी प्रकार है, दरबार से लेके राणों से लेके, क्योंकि प्यारे बाबा साकार आकर जब भी शिव बाबा ने नहीं प्रवेश किया था, नहीं आए थे, तो लखीराज दादा तो हीरो के व्यापारी थे ही थे, तो उनका संबंध तो राजों से था ही था, इसलिए यहां से भी संबंध था उनका। तो इसलिए हमने सेवा भी उसी अनुसार शुरू की, बाबा के हिसाब से ही, बाबा के जो जान पहचान के थे उनों के पास जाते थे, तो वो लोग बहुत प्यार से ज्ञान सारा सुनते थे। तो करते करते बाबा की सेवा बढ़ती गई, और तभी हमारी यहाँ की बहनें जो है कुमारियां, वो भी निकलती गई। अभी लगभग 650-700 बाबा की बच्ची कुमारियां हैं जो माना आश्रम में है, लगभग 550-550 सरेंडर और बाकी सब है ही है सेवा में ट्रायल पर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें रहा, और कुमार लोग भी, भाई लोग भी कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ हैं। तो ये प्यारे बाबा की देन सदा, और हम कभी बाबा से आंतरिक, जैसे बाबा कहते हैं अनुभव है, मांगने से मरना भला, बाबा ऐसे कर दो, बाबा ऐसे, बाबा तो कर ही रहे हैं, बाबा को बोलना ये बाबा की हम इंसल्ट समझते थे।
आदरणीय दीदी जी, गुणों के विशेषता के प्रतिमूर्ति है, दीदी में इतने गुण है, गुणों के खाने है, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। दीदी जी सेवा में नेपाल में आकर जो इतना बड़ा सेवा किया है, इसलिए दीदी का गुण गान और वर्णन जितना भी करे वो कम ही होता है।